गठन संभालने में नहीं आते। उनमें अंगड़ों की भरमार रहने से टांग खिंचाई होती है और मेयक तराजू में तोलने के समय देखी जाने वाली धमा चौकड़ी मचती है। संख्या प्रदर्शन अपनी कोई आवश्यकता भी नहीं, यहाँ क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। इस दृष्टि से हम 5 से 25 का चक्रवृद्धि क्रम यदि चल पड़े तो इसी परिवार के बेटे पोते पर पोते मिलकर समूची विश्व व्यवस्था बना सकने में सफल हो सकते हैं। हम 5 हमारे 25 का उद्घोष यदि प्राणपण से पूरा करने में सभी परिजन भावनापूर्वक जुट पड़े तो देखते ही देखते 1,00,000 का प्रज्ञा संगठन खड़ा होने का स्वप्न साकार हो सकता है। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1988, पृष्ठ 54। वंदनिया माताजी का संदेश, वसंत पर्व पर यह मिशन हजारों लाखों वर्षों तक चलेगा क्योंकि दैवी शक्ति इसके साथ है। मिशन का सूत्र संचालन ऐसा है कि न तो किसी को शंका करनी चाहिए न ही भटकना चाहिए। यदि यह व्यक्ति पर टिका मिशन होता तो व्यक्ति के साथ ही समाप्त भी हो जाता। यह शक्ति पर टिका अभियान है, दैवी अभियान है। विवेकानंदों, निवेदिताओं ने अभी अपनी प्रसुप्त क्षमता को पहचाना नहीं है। यदि सभी जागृत आत्माओं को यह अनुमान हो सके कि वे क्या हैं व किन उद्देश्यों के लिए उनका अवतरण हुआ है तो देखते देखते प्रतिकूलताओं के बीच भी नवसृजन होता चला जाएगा। पूज्यवर की परोक्ष जगत से व मेरी प्रत्यक्ष जगत से तपश्चर्या इन्हीं उद्देश्यों के निमित्त है। संकल्प लें कि आजीवन गुरुदेव के पदचिन्हों पर ही सब चलेंगे, वैसा ही उल्लास मन में बनाए रखेंगे तथा विद्या विस्तार के सभी महत्वपूर्ण दायित्वों को अंतिम स्थिति तक पहुंचाकर रहेंगे। लोकमंगल के लिए ही सबका समर्पित जीवन होगा। घर घर में गुरुजी के विचार पहुंचाकर ही रहेंगे। अखंड ज्योति, मार्च 1991, पृष्ठ 57। युग ऋषि का आश्वासन। 1. युग निर्माण आंदोलन अगले दिनों जिस प्रचंड रूप में मूर्तिमान होगा उसकी रहस्यमय भूमिका कम ही लोगों को विदित होगी, पर यह निश्चित है कि वह आंदोलन बहुत ही प्रखर और प्रचंड रूप से उठेगा और पूर्ण सफल होगा। सफलता का श्रेय किन व्यक्तियों को, किन आस्थाओं को मिलेगा, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं, पर होना यह निश्चित रूप से है। अखंड ज्योति, नवंबर 1966, पृष्ठ -47। 2. अगला कार्य महाकाल स्वयं करेंगे। हमने अपना जीवन नवयुग की पूर्व सूचना देने, महाकाल के इस महान प्रयोजन में सम्मिलित होने के लिए प्रबुद्ध आत्माओं को निमंत्रण देने में लगा दिया। जिस काम के लिए हम आए थे पूरा होने को है। अगला काम महाकाल स्वयं करेंगे। अगले दिन उनकी प्रेरणा से एक बकर प्रतिभाशाली और प्रबुद्ध आत्माएं आएंगी। ये ऐसा एक व्यापक संघर्ष विश्वव्यापी परिमाण में प्रस्तुत करेंगी जो असमानता के सारे कारणों को तोड़ मरोड़ कर फेंक दे और समता की मंगलमयी परिस्थितियों का शुभारंभ करके इसी धरती पर स्वर्ग का वातावरण संभव कर दिखावे। अखंड ज्योति, जुलाई 1969, पृष्ठ 65। 3. मशाल जलती रहेगी। ईश्वरीय प्रेरणा ने इन दिनों एक ऐसे ही युग निर्माण आंदोलन का सृजन किया है जिसका उद्देश्य जनमानस की विपन्न विचार शैली को बदलकर फिर विवेक और औचित्य के आधार पर सोचने और करने का अवसर मिले। जड़ विचारणा में सन्निहित है पर विचारों के साथ क्रिया संबद्ध है और क्रिया सुधरे तो परिस्थितियों के सुधरने में कुछ देर नहीं लगती। अस्तु, विचार परिवर्तन का एक विश्वव्यापी अभियान इन दिनों आरंभ हुआ है। यद्यपि उसका स्वरूप असुरता के विशाल कलेवर की तुलना में नगण्य जैसा है, पर जो सच्चाई की शक्ति जानते हैं उन्हें यह विश्वास करने में कठिनाई नहीं होती कि छोटे से प्रकाश के आगे अंधकार का विशाल कलेवर गल जाता है और छुचिनगारी सुविस्तृत वनों को जलाकर राख कर देती है। विवेकशीलता का तेल और औचित्य के कपड़े को लेकर मशाल जलाई गई है, वह यूं ही बुझ जाने वाली नहीं है। यह अपने युग की महत्तम आवश्यकता एवं ईश्वरीय इच्छा पूरी होने तक जलती ही रहेगी। अखंड ज्योति, अगस्त 1969, पृष्ठ 2-3-4। विराट योजना पूरी होकर रहेगी। भारत के पिछले राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कितनी जनशक्ति और कितनी धनशक्ति लगी थी यह सर्वविदित है। यह भारत तक और उसके राजनैतिक क्षेत्र तक सीमित थी। अपने अभियान का कार्यक्षेत्र उससे सैकड़ों गुना बड़ा है। अपना कार्यक्षेत्र समस्त विश्व है और राजनीति में ही नहीं वरन व्यक्ति तथा समाज के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत करने हैं। इसके लिए कितने सृजनात्मक और कितने संघर्षात्मक मोर्चे खोलने पड़ेंगे इसकी कल्पना कोई भी दूरदर्शी कर सकता है। वर्तमान अस्तव्यस्तता को सुव्यवस्था में परिवर्तित करना एक बड़ा काम है। मानवीय मस्तिष्क की दिशा, विचारणा, आकांक्षा, अभिरुचि और प्रवृत्ति को बदल देना, निष्कृष्टता के स्थान पर उत्कृष्टता की प्रतिष्ठापना करना, सो भी समस्त पृथ्वी पर रहने वाले 4 अरब व्यक्तियों में निस्संदेह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। इसमें अग्रणी व्यक्तियों, असंख्य आंदोलनों और असीम क्रिया तंत्रों का समन्वय होगा। यह एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है जिसे महाकाल अपने ढंग से नियोजित कर रहे हैं। हर कोई देखेगा कि आज की वैज्ञानिक प्रगति की तरह कल भावनात्मक उत्कर्ष के लिए भी प्रबल प्रयत्न होंगे और उसमें एक से एक बक व्यक्तित्व एवं संगठन गजब की भूमिका प्रस्तुत कर रहे होंगे। यह सपना नहीं, सच्चाई है, जिसे अगले दिनों हर कोई मूर्तिमान होते हुए देखेगा। इसे भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए, एक वस्तुस्थिति है जिसे हम आज अपनी आंखों पर चढ़ी दूरबीन से प्रत्यक्षत देख रहे हैं। कल वह निकट आ पहुंचेगी और हर कोई उसे प्रत्यक्ष देखेगा। अगले दिनों संसार का समग्र परिवर्तन करके रख देने वाला एक भयंकर तूफान विद्युत गति से आगे बढ़ता चला आ रहा है, जो इस सड़ी दुनिया को समर्थ, प्रबुद्ध, स्वस्थ और समुन्नत बनाकर ही शांत होगा। अखंड ज्योति, सितंबर 1969, पृष्ठ 64-65। लोगों की निगाह से दूर रहें, यह हो सकता है, पर हर जागृत और जीवित आत्मा यह अनुभव करेगी कि हम उसकी अंतरात्मा में बैठकर कोहराम मचा रहे हैं और नर कीटक एवं नरपशु की जिंदगी को नर नारायण के रूप में परिणत होने की प्रबल प्रेरणा कर रहे हैं। जो आगे बढ़ेंगे उन्हें भरपूर शक्ति देंगे, जो लखड़ा रहे होंगे उन्हें संभालेंगे और जो संभल गए हैं उन्हें आगे बने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित करेंगे। सृजनात्मक एवं संघर्षात्मक अभियानों का नेतृत्व दूसरे लोग करेंगे, पर बाजीगर की उंगलियों की तरह अगणित नर पुतलियों को नचाने में हमारी भूमिका भली प्रकार संपादित होती रहेगी, भले ही उसे कोई जाने या न जाने। हमारी तपश्चर्या भी वस्तुतः नव निर्माण के महान अभियान की तैयारी के लिए अभीष्ट शक्ति जुटाने की विशिष्ट प्रक्रिया भर है। हमें जिस प्रयोजन के लिए भेजा गया है उसे पूरा किए बिना एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। युग परिवर्तन की महान प्रक्रिया अधूरी नहीं रहने दी जा सकती। नवनिर्माण की ईश्वरीय आकांक्षा अपूर्ण नहीं रह सकती। उसको नियोजित करने के लिए प्रतिभाओं को आगे लाया ही जाएगा। उन्हें इच्छा या अनिच्छा से, देर या सबेर से आगे आना ही पड़ेगा। अखंड ज्योति, मई 1970, पृष्ठ 58-59। किसी के मन में यह आशंका नहीं रहनी चाहिए कि आचार्य जी के चले जाने के बाद अपना आंदोलन शिथिल या बंद हो जाएगा। ऐसी आशंका करने वाले यह भूल जाते हैं कि यह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आरंभ की हुई प्रवृत्ति नहीं है। इसके पीछे विशुद्ध रूप से ईश्वरीय इच्छा और प्रेरणा काम कर रही है। जिसके पीछे यह शक्ति काम कर रही हो उसके संबंध में किसी को आशंका नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति असफल हो सकते हैं, भगवान के असफल होने का कोई कारण नहीं। व्यक्ति की इच्छाएं अधूरी रह सकती हैं, भगवान की इच्छा पूरी क्यों न होगी। अब तक के आंदोलन की प्रगति को जिन लोगों ने बारीकी से देखा समझा है उन्हें यह विश्वास करना ही चाहिए कि उपलब्ध सफलताएं हमारे जैसे नगण्य व्यक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार संभव न थी। हमें निमित्त बनाकर कोई महाशक्ति अदृश्य रूप से काम कर रही है। केवल आंखों के सामने कठपुतली नाचने से लोग प्रशंसा उस लकड़ी के टुकड़े की करते हैं जो नाचता दिखता है। वस्तुतः श्रेय उस बाजीगर को है जिसकी उंगलियां अपनी अदृश्य संचालन कला के द्वारा उस खेल का सरंजाम जुटा रही हैं। अखंड ज्योति, नवंबर 1970, पृष्ठ 57-7। हमारा प्रयोजन समझने में किसी को भूल नहीं करनी चाहिए। हम प्रचंड आत्मशक्ति की एक ऐसी गंगा को लाने जा रहे हैं जिससे अभिष्ट सगर सुतों की तरह आग में जलते और नरक में बिलकते जन समाज को आशा और उल्लास का लाभ दे सकें। हम लोकमानस को बदलना चाहते हैं। इन दिनों हर व्यक्ति का मन ऐशनाओं से भरपूर है। लोग अपने व्यक्तिगत वैभव और वर्चस्व से, तृष्णा और वासना से एक कदम आगे की बात नहीं सोचना चाहते। उनका पूरा मनोयाग इसी केंद्र बिंदु पर उलझा पड़ा है। हमारी चेष्टा है कि लोग जीने भर के लिए सुख सुविधा पाकर संतुष्ट रहें। उपार्जन हजार हाथों से करें, पर उसका लाभ अपने और अपने बेटे तक सीमित न रखकर समस्त समाज को वितरण करें। व्यक्ति की विभूतियों का लाभ उसके शरीर और परिवार तक ही सीमित न रहे, वरन उसका बड़ा अंश देश, धर्म, समाज और संस्कृति को, विश्व मानव को, लोकमंगल को मिले। इसके लिए व्यक्ति के वर्तमान कलुषित अंतरंग को बदलना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तिवाद के असुर को समूहवाद के देवत्व में परिणत न किया गया तो सर्वनाश के गर्त में गिरकर मानवीय सभ्यता को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इस विभीषिका को रोकने के लिए हम अग्रिम मोर्चे पर जा रहे हैं। स्वार्थपरता और संकीर्णता की अंधतमिश्रा असुरता में पैर से लेकर सर तक डूबे हुए जनमानस को उभारने और सुधारने में हम अधिक तत्परता और सफलता के साथ कुछ कहने लायक कार्य कर सकें, हमारी भावी तपश्चर्या का प्रधान प्रयोजन यही है। आत्मविद्या की महत्ता को भौतिक विज्ञान की तुलना में अधिक उपयोगी और अधिक समर्थ सिद्ध करने से ही उस उपेक्षित क्षेत्र के प्रति लोक रुचि मुड़ेगी, सो उसे प्रामाणिकता की हर कसौटी पर खरी सिद्ध कर सकने लायक उपलब्धियां प्राप्त करने हम जा रहे हैं। हमारा भावी जीवन इन्हीं क्रियाकलापों में लगेगा, सो परिवार के किसी स्वजन को हमारे इस महाप्रयाण के पीछे आशंका या निराशाजनक बात नहीं सोचनी चाहिए। अखंड ज्योति, मार्च 1971, पृष्ठ 58। प्रचारात्मक, संगठनात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक चतुर्विध कार्यक्रमों को लेकर युग निर्माण योजना क्रमशः अपना क्षेत्र बनाती और बढ़ाती चली जाएगी। नी संदेह इसके पीछे ईश्वरीय इच्छा और महाकाल की विधि व्यवस्था काम कर रही है, हम केवल उसके उद्घोषक मात्र हैं। यह आंदोलन न तो शिथिल होने वाला है न निरस्त। हमारे तपश्चर्या के लिए चले जाने के बाद वह घटेगा नहीं, हजार लाख गुना विकसित होगा। सो हम में से किसी को शंका कुशंकाओं के कुचक्र में भटकने की अपेक्षा अपना वह दृढ़ निश्चय परिपक्व करना चाहिए कि विश्व का नवनिर्माण होना ही है और उससे अपने अभियान को, अपने परिवार को अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका का संपादन करना ही है। अखंड ज्योति, जून 1971, पृष्ठ 61। 9। ईश्वरीय योजना यों लागू होगी, ईश्वर को यह किसी प्रकार मंजूर नहीं। बच्चों को बारूद से खेलने की छूट नहीं दी जा सकती। महाकाल ने इस अव्यवस्था को व्यवस्था में पलटने के लिए अपना शस्त्र उठा ही लिया है। उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया चल पड़ी है। हम सांस रोक कर देखें कि अगले दिनों क्या होता है, प्रवाह कैसे बदलता है, दुनिया कैसे उलटती है और असंभव लगने वाला प्रसंग कैसे संभव बनता है। मनुष्य को बदलना ही पड़ेगा, इच्छा से भी और अनिच्छा से भी। यह रीति नीति देर तक नहीं चल सकती। युग परिवर्तन एक निश्चित तथ्य है, उसके बिना और कोई गति नहीं। इस हेर फेर के लिए अब अधिक समय प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इन दिनों अंतरिक्ष में चल रही हलचलें अगले ही दिनों साकार रूप धारण करेंगी और हम एक ऐसी महाक्रांति का इन्हीं आंखों से दर्शन करेंगे जिसमें सब कुछ उलट पुलट करने की सामर्थ्य भरी होगी। अखंड ज्योति, मई 1972, पृष्ठ 31। 10। नवनिर्माण के अवतरण की किरणें अगले दिनों प्रबुद्ध एवं जीवंत आत्माओं पर बरसेंगी। वे व्यक्तिगत लाभ में संलग्न रहने की लिप्सा को लोकमंगल के लिए उत्सुक करने की आंतरिक पुकार सुनेंगे। यह पुकार इतनी तीव्र होगी कि चाहने पर भी वे संकीर्ण स्वार्थपरता भरा व्यक्तिवादी जीवन जी ही न सकेंगे। लोभ और मोह की जटिल जंजीरें वैसी ही टूटती दिखेंगी जैसे कृष्ण जन्म के समय बंदीगृह के ताले अनायास ही खुल गए थे। यूं मायाबद्ध कृमि कीटकों के लिए वासना और तृष्णा की परिधि तोकर परमार्थ के क्षेत्र में कदम बढ़ाना लगभग असंभव जैसे लगता है। पेट और प्रजनन की विडंबनाओं के अतिरिक्त वे क्या आगे की और कुछ बात सोच या कर सकेंगे। पर समय ही बताएगा कि इसी जाल जंजाल में जकड़े हुए वर्गों में से कितनी प्रबुद्ध आत्माएं उछलकर आगे आती हैं और सामान्य स्थिति में रहते हुए कितने ऐसे अद्भुत क्रियाकलाप संपन्न करती हैं जिन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ेगा। जन्मजात रूप से तुच्छ स्थिति में जकड़े हुए व्यक्ति अगले दिनों जब महामानवों की भूमिका प्रस्तुत करते दिखाई पड़े तो समझना चाहिए युग परिवर्तन का प्रकाश एवं चमत्कार सर्वसाधारण को प्रत्यक्ष हो चला। अखंड ज्योति, मई 1972, पृष्ठ 34। 11। अगले दिनों ज्ञानतंत्र ही धर्मतंत्र होगा। चरित्र निर्माण और लोकमंगल की गतिविधियां धार्मिक कर्मकांडों का स्थान ग्रहण करेंगी। तब लोग प्रतिमा पूजक देव मंदिर बनाने की तुलना में पुस्तकालय विद्यालय जैसे ज्ञान मंदिर बनाने को महत्व देंगे। तीर्थयात्राओं और ब्रह्मभोजों में लगने वाला धन लोक शिक्षण की भावभरी सत्प्रवृत्तियों के लिए अर्पित किया जाएगा। कथा पुराणों की कहानियां तब उतनी आवश्यक न मानी जाएंगी जितनी जीवन समस्याओं को सुझाने वाली प्रेरणाप्रद अभिव्यंजनाएं। धर्म अपने असली स्वरूप में निखर कर आएगा और उसके ऊपर चढ़ी हुई सड़ी गली केंचुली उतरकर कूड़े करकट के ढेर में जा गिरेगी। ज्ञानतंत्र वाणी और लेखनी तक ही सीमित न रहेगा, वरन उसे प्रचारात्मक, रचनात्मक एवं संघर्षात्मक कार्यक्रमों के साथ बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। साहित्य, संगीत, कला के विभिन्न पक्ष विविध प्रकार से लोक शिक्षण का उच्च स्तरीय प्रयोजन पूरा करेंगे। जिनके पास प्रतिभा है, जिनके पास संपदा है, वे उससे स्वयं लाभान्वित होने के स्थान पर समस्त समाज को समुन्नत करने के लिए समर्पित करेंगे। अखंड ज्योति, मई 1972, पृष्ठ 35। 12। अभी भारत में, हिंदू धर्म में, धर्ममंच से, युग निर्माण परिवार में यह मानव जाति का भाग्य निर्माण करने वाला अभियान केंद्रित दिखाई पड़ता है, पर अगले दिनों उसकी वर्तमान सीमाएं अत्यंत विस्तृत होकर असीम हो जाएंगी। तब किसी एक संस्था संगठन का नियंत्रण निर्देश नहीं चलेगा, वरन कोटि-कोटि घटकों से विभिन्न स्तर के ऐसे ज्योतिपुंज फूटते दिखाई पड़ेंगे जिनकी अकूत शक्ति द्वारा संपन्न होने वाले कार्य अनुपम और अद्भुत ही कहे समझे जाएंगे। महाकाल ही इस महान परिवर्तन का सूत्रधार है और वही समयानुसार अपनी आज की मंगलाचरण थिरकन को क्रमशः तीव्र से तीव्रतर, तीव्रतम करता चला जाएगा। तांडव नृत्य से उत्पन्न गगनचुंबी जाज्वल्यमान आग्नेय लपटों द्वारा पुरातन को नूतन में परिवर्तित करने की भूमिका किस प्रकार किस रूप में अगले दिनों संपन्न होने जा रही है, आज उस सबको सोच सकना कल्पना परिधि में ला सकना सामान्य बुद्धि के लिए प्रायः असंभव ही है। फिर भी जो भवितव्यता है वह होकर रहेगी, युग को बदलना ही है। आज की निविड़ निशा का कल के प्रभातकालीन अरुणोदय में परिवर्तन होकर ही रहेगा। अखंड ज्योति, अप्रैल 1973, पृष्ठ 59-13। जिस भ्रष्टाचार को अपराधी दुष्प्रवृत्तियों को पुलिस और अदालतें रोक नहीं पा रही हैं, यदि जागृत जनता इन गुंडा तत्वों के विरुद्ध भवे तरेर दे तो इन मुंह भर अनाचारियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। अनाचारी आतंकवाद इसीलिए जीवित है कि मुंह भर अवांछनीय तत्वों की असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध रोष आक्रोश जगाया नहीं गया है। जिस दिन जनशक्ति की चिनड़ी जगेगी उस दिन अभाव अशक्ति और अज्ञान के दुर्दांत असुरों का अस्तित्व इस धरती पर बना रहना संभव न होगा। इन सबकी दुर्गति महिषासुर मधुकैटभ और शुंभ निशुंभ जैसी होगी। संघ शक्ति का ही दूसरा नाम चंडी है। पौराणिक कथा प्रसंग के अनुसार देवताओं की सम्मिलित शक्ति एक करके ही तो भगवती दुर्गा को सृजा गया था। देवताओं को विजेता और असुरों को पराजित करने के लिए उसी प्रयोग की पुनरावृत्ति अब फिर की जाए, इसके लिए आज का ही उपयुक्त समय है। अखंड ज्योति, जनवरी 1974, पृष्ठ 41-14। महाकाल की अवतरण प्रक्रिया, युग अवतरण के पीछे महाकाल की इच्छा और प्रेरणा का अनुमान लगाने में जिन्हें असमंजस था, वे इस पुण्य प्रक्रिया को उसी प्रकार सुविस्तृत होते देख रहे हैं जैसे कि उषा का हल्का सा आलोक क्रमशः अधिक प्रखर होता और अरुणोदय की प्रत्यक्ष स्थिति तक जा पहुंचता है। इन दिनों ध्वंसात्मक शक्तियां भी जीवन मरण की बाजी लगाकर विघातक विभीषिकाएं उत्पन्न करने में कोई कमी नहीं रहने दे रही हैं। फिर भी आशा का केंद्र यह है कि उसका सामना करने वाले देवत्व का शौर्य और पराक्रम भी निखरता और प्रखर होता चला आ रहा है। निराशा तभी तक रहती है जब तक पराक्रम नहीं जगता। चेतना के ऊंचे स्तर जब उभरते हैं तो न दुष्टता ठहर सकती है न भ्रष्टता। जीतता सत्य ही है, असत्य नहीं। जीवन ही शाश्वत है, मरण तो उससे आंख मिचौनी खेलने भर जब तब ही आता है। सूर्य और चंद्र का आलोक अमर है, उस पर ग्रहण तो जब तब ही चढ़ता है। सृष्टा की इस सुंदर कलाकृति की गरिमा शाश्वत है। विकृतियां तो बुलबुलों की तरह उठती और उछल कूद का कौतुक दिखाकर अपनी लीला समेट लेती हैं। यदा यदा ही धर्मस्य का आश्वासन देने वाला युग विकृतियों का निराकरण करने के लिए समय समय पर संतुलन को संभालने के लिए आता रहा है। आज की विभीषिकाएं उस दिव्य अवतरण की पुकार करती हैं तो आनाकानी क्यों होती, विलंब क्यों लगता। युग चेतना के रूप में महाकाल की अवतरण प्रक्रिया का परिचय हम सब इन्हीं दिनों प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर रहे हैं। जागृत आत्माओं को युग की चुनौती को स्वीकार करने के लिए इन दिनों जो उत्साह उमड़ा है वह देखते ही बनता है। मूर्छितों और अर्धमृतकों को छोक महाकाल की हुंकार ने हर प्राणवान को युग धर्म का पालन करने की युग साधना में संलग्न होने की प्रेरणा दी है। फलत युग सृजन में योगदान देने के लिए हर समर्थ असमर्थ के चरण बढ़ रहे हैं। अखंड ज्योति, सितंबर 1978, पृष्ठ -54-15। विपत्तियां भौतिक क्षेत्र में बढ़ रही हैं और विकृतियों से आत्मिक क्षेत्र उद्विग्न होता जा रहा है। सुधार और बचाव के प्रयास अपेक्षाकृत बहुत धीमे हैं। लगता है मनुष्य द्वारा अन्यमनस्क भाव से किया गया आधा अधूरा प्रयास वर्तमान की समस्याओं को सुझाने तथा भविष्य की विभीषिकाओं को परास्त करने में सफल नहीं हो सकेगा। एक गज जोने के साथ साथ 10 गज टूटने का क्रम चल रहा है। ऐसी दशा में विश्व के महाविनाश के गर्त में जा गिरने की ही आशंका है। अवतार ऐसे ही समय में प्रकट होते हैं। मनुष्य का बाहुबल थक जाता है और विनाश की आशंका बलवती हो जाती है तो प्रवाह को उलटने का पुरुषार्थ महाकाल ही करता है। सृष्टि को अपनी उस सुरम्य विश्व वाटिका का दर्द भरा अवसान सहन नहीं हो सकता। वे धर्म की ग्लानी और अधर्म की अभिवृद्धि को एक सीमा तक ही सहन कर सकते हैं। मानवीय पुरुषार्थ जब संतुलन बनाए रहने में असफल होता है तो व्यवस्था को भगवान स्वयं संभालते हैं। राष्ट्रपति शासन तभी लागू होता है जब राज्य की सामान्य व्यवस्था लखड़ा जाती है। पागलों और बालकों के अधिकार का उत्तरदायित्व किन्हीं अन्य संस्थाओं को सौंप दिया जाता है। इन दिनों ऐसा ही होने जा रहा है। महाकाल की चेतना सूक्ष्म जगत में ऐसी महान हलचलें विनिर्मित कर रही है जिसके प्रभाव परिणाम को देखते हुए उसे अप्रत्याशित और चमत्कारी ही माना जाएगा। अवतार सदा ऐसे ही कुसमय में होते रहे हैं जैसे कि आज हैं। अवतारों ने लोक चेतना में ऐसी प्रबल प्रेरणा भरी है जिससे अनुपयुक्त को उपयुक्त में बदल देने की संभावना सरल हो सके। दिव्य चक्षुओं की युगांतरीय चेतना को गंगावतरण की तरह धरती पर उतरते देखा जा सकता है। चर्म चक्षुओं को भी कुछ ही दिनों में अवतार के लीलासंदोह का परिचय प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अखंड ज्योति, अगस्त 1979, पृष्ठ 13-16। प्रज्ञावतार की सक्रिय भूमिका, बाह्य उपचारों के लिए कोई मनाही नहीं, वे होते हैं और होते रहने चाहिए, किंतु महत्व अंतः उपचार का भी समझा जाना चाहिए। युग परिवर्तन का वास्तविक तात्पर्य है अंतःकरण में जमी हुई आस्थाओं का उत्कृष्टतावादी पुनर्निर्धारण। समस्त समस्याओं का समाधान इस एक ही उपाय पर केंद्रित है, क्योंकि गुत्थियों का निर्माण इसी क्षेत्र में विकृतियां उत्पन्न होने के कारण हुआ है। खाद्य संकट, ईंधन संकट, स्वास्थ्य संकट, सुरक्षा संकट की तरह आस्था संकट के व्यापक क्षेत्र और प्रभाव को भी समझा जाना चाहिए। युग की समस्याओं के समाधान में इससे कम में काम चलेगा नहीं और इससे अधिक और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यूं लोगों को आश्वासन देने की दृष्टि से सुधार और संवर्धन के बहिर्मुखी प्रयास भी चलते रहने चाहिए, किंतु ठोस बात तभी बनेगी जब समष्टि के अंतःकरण में उत्कृष्टता की आस्थाओं का आरोपण और अभिवर्धन युद्धस्तरीय आवेश के साथ किया जाएगा। एक ही समस्या है और एक ही समाधान। मनुष्य इसे भले ही समझ न पाए, पर महाकाल को यथार्थता की जानकारी है। वह लोक मानस में आस्थाओं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए प्रज्ञावतार को भेज रहा है। उसका प्रधान उद्देश्य अनास्था को आस्था में बदल देना ही होगा। अखंड ज्योति, अगस्त 1979, पृष्ठ 17-17। आमतौर से लोभ, मोह और अहंकार के दैत्य ही जनसाधारण को कठपुतली की तरह नचाते हैं। यही प्रभाव सर्वत्र चल रहा है। समर्थ, असमर्थ, धनी, निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित, इन दिनों सभी अपने तुच्छ स्वार्थों की सिद्धि में बुरी तरह संलग्न हैं। लिप्सा और लालसा की कीचड़ में लोक चेतना गहराई तक धंसी हुई है। सामान्य प्रयत्नों से इसमें हेर फेर होते दिखाई नहीं पड़ रहा है, किंतु प्रज्ञावतार की प्रेरणा नए आयाम प्रस्तुत करेगी। अंतः प्रेरणा का उद्गम ही बदलने लगेगा। लोग अपना स्तर उत्कृष्टता की ओर उठाने और आदर्शवादिता की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। यह परिवर्तन बाहर से थोपा हुआ नहीं, भीतर से उभरा हुआ होगा। कहने सुनने को तो धर्म और अध्यात्म की, भक्ति और शांति की, सज्जनता और उदारता की चर्चा आए दिन कहने सुनने को मिलती रहती है। कईयों का विनोद विषय भी यही होता है। तथाकथित धर्मगुरु, लोक नेता, लेखक, वक्ता उत्कृष्टता की चर्चा आए दिन करते रहते हैं, किंतु उन प्रतिपादनों को क्रियान्वित करते इनमें से कोई बिरले ही देखे जाते हैं। फिर सर्वसाधारण के लिए तो उन्हें आचरण में उतारना और भी अधिक कठिन होता है। उदाहरण तो केवल समझाने के लिए प्रचार प्रक्रिया अपनाने के रूप में ही हो सकता है, सो हो भी रहा है। लेखनी और वाणी से आदर्शवादिता का प्रतिपादन भी कम नहीं हो रहा है, किंतु सफलता इसलिए नहीं मिलती कि लोक चेतना की अंतर स्थिति उसे स्वीकारने और अपनाने को सहमत नहीं होती। कानों के सुनने या मस्तिष्क से समझने से काम बनता नहीं। व्यक्ति की स्थिति और कृति तो अंतः प्रेरणा से ही बदलती है। इन दिनों उसी क्षेत्र के ऊसर हो जाने से जो बोया जाता है वह निष्फल होकर रह जाता है। प्रज्ञावतार इस कठिनाई का समाधान करेगा। अखंड ज्योति, अगस्त 1979, पृष्ठ 36-18। स्पष्ट उद्घोष, हमें पूरा विश्वास है कि मनुष्य की समझ लौटेगी, परम सत्ता का सहयोग मिलेगा, प्रकृति अनुग्रह करेगी। बुरे समय की संभावना अब समाप्त ही होने जा रही है, यह हमारी आने वाले कल के संबंध में भविष्यवाणी है। इस परम पुरुषार्थ के निमित्त ही इन दिनों हम अपने 5 प्रतिनिधि विनिर्मित करने में लगे हुए हैं। मौन और एकांत साधना के उपक्रम के साथ साथ प्रजनन जैसी अतीव कठोर तपश्चर्या चल रही है। यह प्रतिनिधि अथवा वंशज हमसे किसी प्रकार दुर्बल न होंगे, वरन सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण संसार में फैले हुए प्रतिभावानों को झकझोर कर नवसृजन योजना में उसी प्रकार बलपूर्वक संलग्न करेंगे जैसा कि हमारे मार्गदर्शक ने हमें किया है। 1 बुद्धिजीवी, 2 शासक, 3 कलाकार, 4 संपन्न तथा 5 भावनाशील वर्ग के लोग कम नहीं है। इनमें से कितने ही निकट भविष्य में अपनी क्षमताओं को स्वार्थ से हटाकर परमार्थ में नियोजित करेंगे और वातावरण आश्चर्यजनक रूप से बदला हुआ प्रतीत होगा। हमारा अस्तित्व बना रहेगा और हम अपनी भूमिका अब से भी अधिक अच्छी तरह निभाते रहेंगे। यह हो सकता है कि इस बीच हम वर्तमान शरीर को त्याग दें, हिमालय के ऋषि क्षेत्र में रहकर उनके साथ मिलजुल कर सूक्ष्म शरीर से काम करें। जो भी करना होगा उसमें हमारा मार्गदर्शक साथ रहेगा। उसके मार्गदर्शन में हमारे संपर्क क्षेत्र में कल्याण मार्ग का ही नियोजन हुआ है। आगे जो होने वाला है उस भविष्य को विगत भूतकाल की तुलना में अधिक श्रेष्ठ और शानदार ही माना जाना चाहिए। अखंड ज्योति, मार्च 1985, पृष्ठ -65। अनावश्यक संपन्नता की ललक ही बेकाबू होने पर उन अनर्थकारी संरचनाओं में प्रवृत्त होती है जिनके कारण अनेकानेक रंग रूप वाले अनाचारों को व्यापक, विस्तृत और प्रचंड होते हुए देखा जा रहा है। लिप्साओं में किसी प्रकार कटौती बन पड़े तो ही वह जूझारूपन उभर सकता है, जो अवांछनीयताओं से गुंथे और पटकनी देकर परास्त कर सके। सतयुग की वापसी, पृष्ठ -27। 8 परिजनों को निर्देश। 1 परिवार के प्रति कर्तव्यप्रायण हो, मोह में न पड़े। परिवार के प्रति हमें सच्चे अर्थों में कर्तव्यप्रायण और उत्तरदायित्व निर्वाह करने वाला होना चाहिए। आज मोह के तमसाछन वातावरण में, जहां बड़े लोग छोटों के लिए दौलत छोने की हविस में और उन्हीं की गुलामी करने में मरते खपते रहते हैं, वहां घर वाले भी इस शहद की मक्खी को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते, जिसकी कमाई पर दूसरे ही गुलछर्रे उड़ाते हैं। आज के स्त्री बच्चे यह बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनका पिता या पति उनको लाभ देने के अतिरिक्त लोकमंगल जैसे कार्यों में कुछ समय या धन खर्च करे। इस दिशा में कुछ करने पर घर का विरोध सहना पड़ सकता है। उन्हें आशंका रहती है कि कहीं इस ओर दिलचस्पी लेने लगे तो अपने लिए जो मिलता था उसका प्रवाह दूसरी ओर मुड़ जाएगा। ऐसी दशा में स्वार्थ संकीर्णता के वातावरण में पले उन लोगों का विरोध उनकी दृष्टि में उचित भी है, पर उच्च आदर्शों की पूर्ति उनके अनुगमन से संभव ही नहीं रहती। यह सोचना क्लिष्ट कल्पना है कि घर वालों को सहमत करने के बाद तब परमार्थ के लिए कदम उठाएंगे। यह पूरा जीवन समाप्त हो जाने पर भी संभव न होगा। जिन्हें वस्तुतः कुछ करना हो, उन्हें अज्ञानग्रस्त समाज के विरोध की चिंता न करने की तरह परिवार के अनुचित प्रतिबंधों को भी उपेक्षा के गर्त में ही डालना पड़ेगा। घर वाले जो कहें, जो चाहें वही किया जाए, यह आवश्यक नहीं। हमें मोहग्रस्त नहीं, विवेकवान होना चाहिए और पारिवारिक कर्तव्यों की उचित मर्यादा का पालन करते हुए उन लोभ एवं मोह भरे अनुबंधों की उपेक्षा ही करनी चाहिए, जो हमारी क्षमता को लोकमंगल में न लगने देकर कुटुंबियों की ही सुख सुविधा में नियोजित किए रहना चाहते हैं। इस प्रकार का पारिवारिक विरोधारंभ में हर महामानव और श्रेयपथ के पथिक को सहना पड़ा है। अनुकूलता पीछे आ गई यह बात दूसरी है, पर आरंभ में श्रेयार्थी को परिवार के इशारे पर गतिविधियां निर्धारित करने की अपेक्षा आत्मा की पुकार को ही प्रधानता देने का निर्णय करना पड़ा है। अखंड ज्योति, June 1971, पृष्ठ 58। 2 सृजन शिल्पी की भूमिका निभानी है। युग निर्माण परिवार के प्राणवान परिजनों को इन दिनों सृजन शिल्पी की भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि भौतिक ललक लिप्साओं पर नियंत्रण किया जाए, लोभ मोह के बंधन ढीले किए जाएं, संकीर्ण स्वार्थपरता को हल्का किया जाए, पेट और प्रजनन भर के लिए जीवन की संपदा का अपव्यय करते रहने की आदत को मोड़ा मरोड़ा जाए, औसत भारतीय स्तर का निर्वाह पर्याप्त समझा जाए, महत्वाकांक्षाओं की दिशा बदली जाए, वासना तृष्णा और अहंता के आवेश शिथिल किए जाएं। युग धर्म के निर्वाह के लिए कुछ बचत इसी परिवर्तन से हो सकती है। परमार्थ तभी बन पड़ता है जब स्वार्थ पर अंकुश लगाया जाए। ब्राह्मणत्व और देवत्व की गरिमा स्वीकार करने और उच्च स्तरीय आदर्शों को व्यवहार में उतारने के साहस जुटाने का यही अवसर है। उसे चूका नहीं जाना चाहिए। युग पर्व के विशेष उत्तरदायित्वों की अवमानना करने वाले जीवंत प्राणवानों को चिरकाल तक पश्चाताप की आग में जलना पड़ता है। देव मानवों की बिरादरी में रहकर कायरता के व्यंग उपहास सहना जितना कठिन पड़ता है, उतना उच्च प्रयोजन के लिए त्याग बलिदान का जोखिम उठाना नहीं। जिनकी अंतरात्मा में ऐसी अंतः प्रेरणा उठती हो, वे उसे महाकाल प्रेरित युग चेतना का आह्वान उद्बोधन समझे और तथाकथित बुद्धिमानों और स्वजनों की उपेक्षा करके भी प्रज्ञावतार का अनुकरण करने के लिए चल पड़े। इसमें इन्हें प्रथमत ही प्रसव पीड़ा की तरह कुछ अड़चन पड़ेगी, पीछे तो सब कुछ शुभ और श्रेष्ठ ही दृष्टिगोचर होगा। अखंड ज्योति, August 1979, पृष्ठ 55-56। 3 ज्ञानयज्ञ के लिए अंशदान, नव सृजन के लिए साधनों की भी आवश्यकता रहेगी ही। भौतिक प्रयोजनों में तो अर्थ साधन ही प्रधान होते हैं, किंतु युग प्रवाह बदलने जैसे अध्यात्म अभियान के लिए भी अंततः साधन तो चाहिए ही। यूं श्रम समय मनोयोग भाव संवेदन जैसे तत्वों की ही युग परिवर्तन में प्रमुखता मानी जाएगी, फिर भी अर्थ साधनों के बिना उन्हें भी कार्य रूप में परिणत कर सकना संभव नहीं हो सकेगा। वस्तुएं तो इस निमित्त भी चाहिए ही। सामान्य निर्माण कार्यों के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं, फिर इस महानतम कार्य के लिए साधनों के बिना ही काम चलता रहे ऐसा संभव नहीं। यह आवश्यकता भी जागृत आत्माओं को ही पूरी करनी होगी। वैयक्तिक कार्यों में कटौती करके ही युग धर्म के लिए समयदान की व्यवस्था बन सकती है। इसी प्रकार निजी खर्चों में कटौती करके ही युग की पुकार के निमित्त अर्थ साधन प्रस्तुत कर सकना संभव हो सकता है। उत्तराधिकारियों के लिए जो अनावश्यक धन संपदा छोड़ी जाती है, उस मोहग्रस्तता पर अंकुश लगाने का तो हर दृष्टि से औचित्य है। निजी परिवार को ही सब कुछ मानते रहना और विश्व परिवार के लिए कुछ भी न करना, ऐसा व्यामोह है जो युग शिल्पियों के लिए अशुभनीय ही ठहरता है। युग निर्माण परिवार के हर सदस्य को आरंभ से ही एक घंटा समय और आधा कप चाय की कीमत ज्ञानयज्ञ के लिए देते रहने की प्रेरणा दी गई है। वह दिशा निर्धारण युग शिल्पियों के लिए आरंभिक एवं अनिवार्य कर्तव्य बोध की तरह था। अब उसमें उदात्त अभिवृद्धि का समय आ गया। समय और धन दोनों ही अनुदानों का स्तर तथा परिमाण चाहिए, जिसे अपने अंतरंग में जितनी युग चेतना हलचल मचाती दिखाई पड़े, उन्हें उतने से ही भावभरे अनुदान प्रस्तुत करने की तैयारी करनी चाहिए। अखंड ज्योति, अगस्त 1979, पृष्ठ -56। 4. प्रज्ञापुत्रों को जागृत जीवंत होना है। युग संधि के इस बीजारोपण वर्ष में सभी प्रज्ञापुत्रों को जागृत और जीवंत होने के लिए कहा गया है। आदर्शवादी कल्पना, मान्यता, भावना अपने समय पर अपने स्थान पर उपयुक्त है, पर इतने भर से काम चलता नहीं। मनमोदक खाने से किसका पेट भरा है? शेख चिल्ली को उसका मनचाहा गृहस्थ कहाँ मिला था? आदर्शवादिता अपनाने में अपने अभ्यस्त चिंतन और निर्धारित जीवनचर्या में क्रांतिकारी उलट पुलट करनी होती है। जो ऐसा साहस जुटा पाते हैं, जुटाने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करते हैं, उन्हीं को साधक कहते हैं। साधना से सिद्धि मिलने का सिद्धांत सुनिश्चित है। सिद्धि का तात्पर्य जादुई चमत्कार दिखाकर किसी को अचंभे में डालना नहीं, वरन यह है कि अपनी प्रबल मनस्विता और पुरुषार्थ परायणता के सहारे अभीष्ट लक्ष्य तक हर कीमत पर पहुंचकर ही रहा जाए। युगशिल्पी यदि यह अनुभव करते हैं कि महाकाल ने इन दिनों उनके लिए युग सृजन की साधना ही सर्वोपरि महत्व की समझी और निर्धारित की है, तो फिर उन्हें अंगद, हनुमान, अर्जुन, विवेकानंद, रामतीर्थ, गोविंद सिंह, समर्थ रामदास, चाणक्य, बुद्ध, महावीर, गांधी, विनोबा आदि के चरणचिन्हों पर चलते हुए युग धर्म के निर्वाह में एकनिष्ठ भाव से लग जाना चाहिए। इसके लिए प्रवचन कला इतनी प्रभावी नहीं हो सकती जितनी की अपना आदर्शवादी उदाहरण प्रस्तुत कर सकने की साहसिकता। इन दिनों इसी उभार की अत्यधिक आवश्यकता है। इन्हीं दिनों प्रत्येक प्रज्ञापुत्र को अपने स्वरूप को समझने और तदनुरूप जीवन की दिशाधारा निर्धारित करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। इसे व्यक्ति विशेष का अनुरोध न समझा जाए, अपितु महाकाल का ऐसा निर्देश निर्धारण माना जाए, जिसे मानने पर ही आत्मिक जागरूकता सार्थक होती है। जो बहाने थकेंगे, कृपणता की व्यस्तता और चिंताओं के आवरण में छिपाने का प्रयत्न करेंगे, वे मुंह छिपा लेने पर भी प्रस्तुत कठिनाइयों से बच नहीं सकेंगे। अमूल्य समय को गंवा बैठने की हानि इतनी बड़ी सहेंगे जिसके लिए अनंत काल तक पश्चाताप करना पड़ेगा और उसकी क्षतिपूर्ति कदाचित भविष्य में कभी भी संभव न हो सकेगी। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1980, पृष्ठ 10। 5. प्रज्ञा परिवार, अपने मिशन और परिवार का नामकरण गायत्री परिवार किया गया। अगले दिनों इसका स्वरूप ज्यों का त्यों रहेगा, पर बोलचाल की भाषा में उसे प्रज्ञा परिवार कहना भी उपयुक्त है। अब तक गायत्री परिवार के सदस्य परिजन कहलाते रहे हैं, किंतु अब उन्हें अपने समुदाय और उत्तरदायित्व का बोध कराने वाला चिर प्राचीन किंतु नवीन नाम प्रज्ञा परिजन दिया जा रहा है। गायत्री उपासक के स्थान पर प्रज्ञापुत्र कहे जाने का महत्व आत्मबोध की दृष्टि से इसलिए अधिक है कि युग चेतना को उभारने और नवयुग का सृजन करने में निरत महाकाल की महाकाली महाप्रज्ञा के अग्रदूत होने के गौरव का अनुमान किया जा सके। नित्य उपासना के अतिरिक्त ज्ञानयज्ञ के निमित्त नियमित रूप से समयदान एवं अंशदान निकालते रहने की सदस्यता शर्त देव परिवार के परिजनों के लिए आरंभ से ही निर्धारित की गई है। अपने समय में अग्निहोत्र को प्रतीक और ज्ञानयज्ञ को युग धर्म के रूप में मान्यता मिली थी। कभी सब लोग देवमानव थे और सभी ज्ञान संपन्न, इसलिए ज्ञानयज्ञ को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि वह महत्वपूर्ण है। आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन दिनों चारों ओर अज्ञानांधकार की घोर तमिश्रा ने सर्वत्र अपना साम्राज्य जमा लिया है। इस स्थिति में ज्ञानयज्ञ की लाल मशाल जलानी पड़ेगी और उसी को युग यज्ञ की मान्यता देनी पड़ेगी। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1980, पृष्ठ 48। 6. प्रज्ञा परिजन अपना स्वरूप समझें। उनके भीतर दूसरों की तुलना में कहीं अधिक सुसंस्कारिता, आध्यात्मिकता की ऊर्जा विद्यमान है। इस ऊर्जा के सदुपयोग का ठीक यही मौसम है। समय चूक जाने पर पछताना ही शेष रह जाता है। गाड़ी चूक जाने पर यात्री पछताते और दूसरी गाड़ी के लिए लंबी प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। जो गाड़ी इन दिनों प्लेटफॉर्म पर है, वह चली गई तो फिर दूसरी आने के लिए कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और तब तक कौन सौभाग्यशाली अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रहेगा। इस संबंध में कुछ कह सकना कठिन है। इन पंक्तियों में सामयिक उद्बोधन इतना ही है कि प्रज्ञा परिजन अपनी विशिष्ट उत्कृष्टता पर बार बार विचार करें, अपना स्वरूप लक्ष्य समझें और युग धर्म की चुनौती स्वीकार करने में आनाकानी न करें। हनुमान और बुद्ध की तरह उनमें बीजांकुर मौजूद हैं, मात्र इन्हें उभरने का अवसर मिलने भर की कमी है। इसके लिए ठीक यही समय है। आत्मकल्याण और विश्व कल्याण का दोहरा सुयोग सामने है। मात्र इतना भर करना शेष है कि अपने को, समय को पहचाना जाए और तदनुरूप दिशाधारा निर्धारित करने में प्रमाद न बरता जाए। अखंड ज्योति, जून 1982, पृष्ठ 4-7। तीन स्तर की जागृत आत्माओं का संगठन। प्रज्ञा परिवार में तीन स्तर की जागृत आत्माओं का एकत्रीकरण हुआ है। वातावरण में प्रभाव प्रेरणा भर सकने की दृष्टि से उपयुक्त व्यक्तियों को प्रज्ञापुंज कहा जाएगा। नव सृजन के अग्रदूत युग शिल्पी, जो परिवर्तन के महान निर्णय को अपने में उतारने और दूसरों में प्रवेश कराने के लिए प्रचंड पराक्रम करेंगे, उन्हें प्रज्ञापुत्र कहा गया है। तीसरे प्रज्ञा परिजन, जो जनसंपर्क और लोक सेवा के क्षेत्रों में भी अपनी विविशताओं के कारण कुछ अधिक न कर सकेंगे, किंतु आत्मनिर्माण और परिवार निर्माण की दृष्टि से कुछ उठा भी न रखेंगे। इन दोनों में से प्रज्ञा पुंजों को विशिष्ट, प्रज्ञा पुत्रों को वरिष्ठ और प्रज्ञा परिजनों को कनिष्ठ कहकर संबोधित किया जाता है। इन्हें मूर्धन्य, प्रखर और पराक्रमी भी कहा जा सकता है। अखंड ज्योति, मई 1982, पृष्ठ -55-8। दायित्व निभाए। ठोस काम वह किया जाना चाहिए जिसे करने का दायित्व महाकाल ने वरिष्ठ प्रज्ञापुत्रों के कंधों पर सौंपा है। वह कार्य एक ही है, जनमानस में महाप्रज्ञा का आलोक भर देना। इसके लिए किस स्थिति में किन्हें क्या करना चाहिए, इसका उल्लेख इन पंक्तियों में होता रहा है। उस पर एक बार फिर दृष्टिपात किया जा सकता है कि जो सौंपा गया था वह बन पड़ा या नहीं। बन पड़ा तो इतना कम तो नहीं है जो तपती धरती को मूसलाधार जल बरसने वाले महामेघ की गरिमा से कम पड़े। समय की मांग बड़ी है, उसके लिए उथली पूजा से काम नहीं चल सकता। जलते तवे पर पानी की कुछ बूंदे पने से क्या काम चलता है। इसके लिए इन दिनों समर्थों का ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए जो उल्टे को उल्ट कर सीधा कर सके। इसके लिए प्रत्येक वरिष्ठ प्रज्ञापुत्र सर्वथा समर्थ है। यदि परिस्थितियां बाधक हैं तो उन्हें ठोकर मारकर रास्ता रोकने से हटाया जा सकता है। सृष्टा का राजकुमार मनुष्य केवल इसलिए दुर्बल पड़ता है कि उसे लोभ, मोह और अहंकार की बेड़ियां बेतरह जकड़ कर असहाय बना देती हैं। यदि औसत भारतीय स्तर का निर्वाह अपनाया जाए, परिवार को छोटा, सभ्य, सुसंस्कृत, स्वावलंबी रखा जा सके, तो युग धर्म के उच्च स्तरीय निर्वाह की सुविधा हर किसी को सहज ही मिल सकती है। संकीर्ण स्वार्थपरता और अहंकारी साज सज्जा जुटाने में तनिक कटौती की जा सके तो हर विचारशील को इतना अवकाश मिल सकता है जिसमें वह आत्मकल्याण और युग निर्माण की महती आवश्यकताओं को पूरा कर सके। प्रकारांतर से यही कोयले के बहुमूल्य हीरा बनाने वाला कायाकल्प है। इसे स्वेच्छापूर्वक किया जा सकता है। सहयोग की कमी हो तो सत्पात्र की सुगंध सूंघकर खिले पुष्प पर मंडराने वाले भ्रमरों की तरह समूचा देव परिकर दौड़ पड़ता है। गुरुदेव ने मात्र अपनी पात्रता बढ़ाने में अथक प्रयास किए हैं और वह पाया है जो सच्चे अध्यात्म का सच्चा अवलंबन करने पर मिलना चाहिए। इसी के अनुकरण की आवश्यकता है। सबके लिए एक ही संदेश है। यदि किसी की प्रज्ञा अभियान में, उसके सूत्र संचालक में वास्तविक श्रद्धा हो तो उसका बखान करके नहीं, वरन अपनी ऐसी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करनी चाहिए जिसकी इस विनाश के ज्वालामुखी पर बैठे संसार को नितांत आवश्यकता है। ऐसी अनिवार्य आवश्यकता है, इतनी अनिवार्य कि उसे एक क्षण के लिए भी टाला नहीं जा सकता। अखंड ज्योति, जुलाई 1985, पृष्ठ -64-9। व्यामोह से उबरे वरिष्ठ प्रज्ञापुत्र अपने को देव मानव समझें और अनुभव करें कि यह जन्म उन्हें संपदा एवं विलासिता के व्यामोह में डूबे रहने के लिए नहीं मिला है। नियति का निर्धारण यह है कि वे युग की समस्याओं को सुझाने के लिए अपने आप को भीम, अर्जुन समझें, अंगद, हनुमान माने और वह करें जो नल नील द्वारा असंभव को संभव करके दिखा दिया गया था। प्रज्ञापुत्रों को इस आपत्तिकाल में लालसा, लिप्सा, तृष्णा, वासना और अहंता की महत्वाकांक्षाएं पूरी करने की छूट नहीं है। उन्हें दूसरा प्रयोजन देकर भेजा गया है, उसी को तत्परतापूर्वक करना है, सफलता असफलता का, लाभ हानि का विचार किए बिना, क्योंकि महाभारत विजय की तरह पांडवों की जीत निश्चित है। इससे पीछे हटकर अपयश ही कमाया जा सकता है, अपना लोक परलोक ही बिगाड़ा जा सकता है। अच्छा हो कि ऐसा अवसर न आए। अच्छा हो कि यह सुनने के लिए, यह देखने के लिए कान व नेत्र सक्रिय न रहें कि जिनके ऊपर आदर्शवादिता और उत्कृष्टता को जीवंत रखने का दायित्व था, वे परीक्षा की घड़ी आने पर खोटे सिक्के की तरह काले पड़ गए और कूड़े के ढेर में छिप गए। प्रज्ञा परिजनों को भी इतना समय उसी प्रकार नवसृजन के लिए उत्सुक करना चाहिए जिस प्रकार की बुद्ध के परिव्राजकों और गांधी के सत्याग्रहियों ने बिना लोभ लालच की ओर मन डुलाए कष्ट के दिन हंसते हुए बिताए। क्या करना होगा, इसके लिए अनेक बार बताया जा चुका है कि इस अवधि को गृहस्थ ब्राह्मणों और विरक्त संतों की तरह लोकमानस के परिष्कार में, घर घर अलख जगाने में, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन की विचारक्रांति में और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के पुण्य परमार्थ में नियोजित किया जा सकता है। प्रश्न अनुदान योगदान का है। जिसने इसे स्वीकार कर लिया उसके लिए समयदान और अंशदान कोई समस्या नहीं। उसे तो सुदामा के तंदुलों और शबरी के बेरोन की तरह कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। शरीर से बालू चिपटाकर समुद्र पाटने का दुस्साहस करने वाली गिलहरी से अधिक गई गुजरी स्थिति में हम में से कोई भी नहीं है। कृपणता तो पापी मन में घुसी रहती है, वही चित्र विचित्र बहाने गढ़ती और अस्वस्थता असमर्थता की आड़ ढूंढती है। अखंड ज्योति, सितंबर 1986, पृष्ठ 54-10। सर्वप्रथम आगे आने वाले युग सृजेताओं को व्रतधारी प्रज्ञापुत्र कहा जाएगा। वे उपासना साधना आराधना के आधार पर आत्म परिष्कार करेंगे, धार को पैनी करेंगे और इतनी अंतः क्षमता अर्जित करेंगे जिसके आधार पर उनसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते बन पड़े। उपासना अर्थात दिव्य सत्ता के लिए बैठना, उसके साथ गुंथ जाना, आग ईंधन की तरह, सूर्याग्रह के समय अर्पित किए गए जल की तरह, कर्मकांड के रूप में गायत्री जैसे मंत्र का अर्थ सहित ध्यान एवं जप और उदीयमान सूर्य का ध्यान किया जा सकता है। यह नियमित होना चाहिए। उपासना से आत्मबल बढ़ता है, प्राण ऊर्जा का रोम रोम में संचार होता है। इस कृत्य को दैनिक जीवन में किसी न किसी प्रकार गुंथा ही रखना चाहिए। साधना का पूरा नाम है जीवन साधना, जीवन को सुव्यवस्थित बनाना, जीवन संपदा को आत्म परिष्कार और लोकमंगल के पुण्य परमार्थ के साथ जोक उसे सब प्रकार कृतकृत्य बनाना। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास जैसी चेष्टाएं करनी पड़ती हैं। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम अपनाना होता है। सादा जीवन उच्च विचार का मंत्र हृदयगम किया जाए, औसत नागरिक स्तर का निर्वाह पाकर संतुष्ट रहा जाए, अपने परिवार के सदस्यों को स्वावलंबी और सुसंस्कारी बनाना पर्याप्त माना जाए, उनके लिए उत्तराधिकार में बड़ी संपदा छोड़ मरने की ललक न संजोई जाए। यही है प्रामाणिकता, प्रखरता और प्रतिभा अर्जित करने का राजमार्ग। आराधना का अर्थ है विराट ब्रह्म की, विशाल विश्व की, विश्व मानव की सेवा साधना में समुचित उत्साह और तत्परता रखना। इसी परमार्थ परायणता को ईश्वर की आराधना कहते हैं। यही वह पूजा है जिससे आत्मसंतोष, लोकसम्मान एवं देवी अनुग्रह के तीनों लाभ प्राप्त होते हैं। स्वार्थ और परमार्थ की समन्वित सिद्धि होती है, लोक पर लोक दोनों बनते हैं। अखंड ज्योति, सितंबर 1988, पृष्ठ 61-62-11। लोकमानस का परिष्कार सबसे बड़ा परमार्थ, इन दिनों सबसे बड़ा परमार्थ लोकमानस का परिष्कार ही है। इस क्षेत्र में घुसी विकृतियों के कारण ही दरिद्रता, रुग्णता, आपदा जैसी पिछड़ेपन की जन्मदात्री हीनताएं मनुष्य के सिर पर चढ़ती हैं। आज की समस्त समस्याएं आर्थिक संकट के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। उन सबका एक ही समाधान है जनमानस का परिष्कार, सत्प्रवृत्ति संवर्धन। इन्हीं पुण्य प्रयोजनों को प्रमुखता देनी चाहिए। अखंड ज्योति, सितंबर 1988, पृष्ठ 62। मानवता के प्यार अकेले हमें ही हो सो बात नहीं, इस गए गुजरे जमाने में भी ऐसी आत्माएं विद्यमान हैं जो वासना तृष्णा की गंदी कीचड़ में ही सने मरने के लिए नहीं जन्मी, वरन कुछ विशेष जीवन लक्ष्य उनके सामने है। समय की चुनौती को ऐसे ही साथी सहचरों को लेकर कुछ सोचने और करने के लिए साहस किया है। पूज्य गुरुदेव। 9. महाकाल की चेतावनी। 1. चेते, चूक न करें, नया युग तेजी से बढ़ता चला आ रहा है, उसे कोई रोक न सकेगा। प्राचीनकाल की महान परंपराओं को अब पुनः प्रतिष्ठित किया जाना है और मध्यकालीन अंधकार युग की दुष्ट विषमताओं का तिरोधान होना है। महाकाल उसके लिए आवश्यक व्यवस्था बना रहे हैं और तदनुकूल आधार उत्पन्न कर रहे हैं। युग का परिवर्तन अवश्यंभावी है। हमारा छोटा सा जीवन इसी की घोषणा करने, सूचना देने के लिए है। परिस्थिति के अनुरूप जो समय रहते बदल सकेंगे वे संतोष और सम्मान प्राप्त करेंगे, और जो बदलेंगे नहीं, मूर्ता के लिए दुराग्रह करेंगे, वे बुरी तरह कुछ ले जाएंगे। उनके हाथ अपयश, असंतोष एवं पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ न लगेगा। अखंड ज्योति, जुलाई 1969, पृष्ठ 65-2। व्यक्ति के नाम हमारा उद्बोधन सदा से यही रहा है कि वह मात्र शरीर ही नहीं, आत्मा भी है। केवल परिवार तक की उसकी जिम्मेदारी सीमित नहीं, वरन समाज तक व्यापक है। केवल इंद्रियां ही नहीं, अंतःकरण को भी तृप्त किया जाए। केवल भौतिक जीवन को ही सब कुछ न मान लिया जाए, आत्मिक जीवन की महत्ता एवं आवश्यकता को भी समझा जाए। कह नहीं सकते हमारे उद्बोधन का किस प्रकार कितना प्रभाव पड़ा, पर यदि पड़ा होगा तो उसे 100 बार यह सोचने को विवश होना पड़ा होगा कि उसकी वर्तमान गतिविधियां न तो संतोषजनक हैं, न पर्याप्त। उसे कुछ कदम आगे बढ़कर कुछ ऐसा करना चाहिए जो अधिक महत्वपूर्ण हो, अधिक आत्मशांति और आंतरिक संतोष दे सके। ऐसे कदम उठा सकना हर किसी के लिए संभव है। केवल आत्मबल का अभाव ही ऐसे पारमार्थिक कदम उठाने से रोकता है जो सुरदुर्लभ मानव जीवन के अमूल्य अवसर को सार्थक बना सके। तात्विक दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता है कि हम व्यर्थ और अनर्थ कहे जा सकने वाले क्रियाकलापों में लगे रहे और कीमती जीवन के हीरे मोतियों से तोले जा सकने योग्य बहुमूल्य क्षण यों ही गंवा दिए। जिन उपार्जनों को तुच्छ सा शरीर लेकर तुच्छ जीवधारी पूरा कर लेते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द मनुष्य का जीवन भी चक्कर काटे और अंततः अपने को बिना किसी उपलब्धि के यों ही समाप्त कर ले, तो इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ही कहा जाएगा। हमने सदा सचेत किया है कि परिजनों का जीवनक्रम इतना घटिया न बीतना चाहिए। पेट और प्रजनन कोई बड़े आदर्श नहीं। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कीट पतंग और पशु पक्षी भी इन दो आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। फिर मनुष्य जैसे बुद्धिजीवी के लिए उनकी पूर्ति क्या कठिन हो सकती है। इतना ही उद्देश्य अपना है तो उसे पशु जीवन कहा जाएगा। मानव जीवन की विशेषता तो आदर्शवादिता और उत्कृष्टता पर निर्भर है। यदि उस दिशा में कुछ न किया जा सका तो निस्संकोच यही कहा जाएगा कि जीवन व्यर्थ चला गया। जीवन बहुमूल्य है, उसे निरर्थक प्रयोजनों के लिए खर्च कर डालना एक ऐसी बड़ी भूल है जिसके लिए हजारों वर्षों प्रायश्चित करना होगा। हर दिन इसलिए अश्रुपात करना होगा कि नर शरीर का एक बहुमूल्य अवसर मिला था, उसे हमने आत्मकल्याण के लिए खर्च न कर उन्हीं निरर्थकताओं में लगा दिया जिन्हें निम्न योनि वाले जीव भी बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं। अगले ही दिनों इस पश्चाताप की आग में से अपने को गुजरना पड़ेगा। इस वस्तुस्थिति की आगाही हमने निरंतर दी है। पता नहीं किस पर कितना उस चेतावनी का असर पड़ा और कितनों ने इसे निरर्थक बकवास कह मुख फेर लिया। अखंड ज्योति, नवंबर 1969, पृष्ठ 61-3। दो में एक रास्ता चुने, मूर्तावादी मोहग्रस्त असुर वर्ग और लोकमंगल की भूमिका संपादित करने में संलग्न देव वर्ग, इन दोनों को ही अगले दिनों अपनी रीति नीति की श्रेष्ठता निकृष्टता प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। दोनों गतिविधियों के सत्परिणाम और दुष्परिणाम उपस्थित होंगे और उनको देख समझकर भावी पीढ़ी को यह निश्चय करने का अवसर मिलेगा कि उपरोक्त दोनों पद्धतियों में से कौन उपयुक्त और कौन अनुपयुक्त है, इनमें से किसे ग्रहण किया जाए और किसे त्यागा जाए। अगले दिनों हमें इनमें से किसी एक वर्ग में सम्मिलित होना होगा, बीच में नहीं रहा जा सकता। महाकाल के विधान में प्रतिरोध प्रस्तुत करने वाले मूर्तावादी लोगों में सम्मिलित रहना हो तो खुशी खुशी वैसा करें और करालकाल दंड के प्रहार सहने को तैयार रहें। यदि यह अभीष्ट न हो तो ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति में सहायक बनकर चलना ही उचित है। तब हमें अपनी गतिविधियां अभी से बदलनी होंगी और उस पुण्य प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसमें आत्मकल्याण और विश्व कल्याण दोनों का ही समान रूप से समन्वय हो। अखंड ज्योति, दिसंबर 1967, पृष्ठ 4-4। लोभ मोह के बंधन में न फंसे, अब किसी को भी धन का लालच नहीं करना चाहिए और बेटे पोतों को दौलत छोड़ मरने की विडंबना में नहीं उलझना चाहिए। यह दोनों ही प्रयत्न निरर्थक सिद्ध होंगे। अगला जमाना जिस तेजी से बदल रहा है उससे इन दोनों विडंबनाओं से कोई लाभान्वित न हो सकेगा, वरन लोभ और मोह की इस दुष्प्रवृत्ति के कारण सर्वत्र धिक्कारा भर जाएगा। दौलत छिन जाने का दुख और पश्चाताप सताएगा, सो अलग। इसलिए यह परामर्श हर दृष्टि से सही ही सिद्ध होगा कि मानव जीवन जैसी महान उपलब्धि का उतना ही अंश खर्च करना चाहिए जितना निर्वाह के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हो। इस मान्यता को हृदयंगम किए बिना आज की युग पुकार के लिए किसी के लिए कुछ ठोस कार्य कर सकना संभव न होगा। एक ओर से दिशा मुड़े बिना दूसरी दिशा में चल सकना संभव ही न होगा। लोभ मोह में जो डूबा हुआ होगा उसे लोकमंगल के लिए न समय मिलेगा न सुविधा। सो परमार्थ पक्ष पर चलने वालों को सबसे प्रथम अपने इन दो शत्रुओं को, रावण कुंभकर्णों को, कंस दुर्योधनों को निरस्त करना होगा। यह दो आंतरिक शत्रु ही जीवन विभूति को नष्ट करने के सबसे बड़े कारण हैं। सो इनसे निपटने का अंतिम महाभारत हमें सबसे पहले आरंभ करना चाहिए। देश के सामान्य नागरिक जैसे स्तर का सादगी और मितव्ययतापूर्ण जीवन स्तर बनाकर स्वल्प व्यय में गुजारे की व्यवस्था बनानी चाहिए और परिवार को स्वावलंबी बनाने की योग्यता उत्पन्न करने और हाथ पांव से कमाने में समर्थ बनाकर उन्हें अपना वजन आप उठा सकने की सड़क पर चला देना चाहिए। बेटे पोतों के लिए अपनी कमाई की दौलत छोक मरना भारत की असंख्य कुरीतियों और दुष्ट परंपराओं में से एक है। संसार में अन्यत्र ऐसा नहीं होता। लोग अपनी बची हुई कमाई को जहां उचित समझते हैं वसीयत कर जाते हैं। इसमें न लड़कों को शिकायत होती है न बाप को कंजूस कृपण की गालियां पड़ती हैं, सो अलग। इसलिए हम लोगों में से जो विचारशील हैं उन्हें तो ऐसा साहस इकट्ठा करना चाहिए जिनके पास इस प्रकार का ब्रह्मवर्चस्व न होगा, बेमाला सटकाकर, पूजा पत्री उलट उलट कर मिथ्या आत्मप्रवंचना भले ही करते रहें, वस्तुतः परमार्थ पथ पर एक कदम भी न बढ़ सकेंगे। समय, श्रम, मन और धन का अधिकाधिक समर्पण विश्व मानव की सेवा कर सकने की स्थिति तभी बनेगी जब लोभ और मोह के खरदूषण कुछ अवसर मिलने दें। जिनके पास गुजारे भर के लिए पैतृक संपत्ति मौजूद है, उनके लिए यही उचित है कि आगे के लिए उपार्जन बिल्कुल बंद कर दें और सारा समय परमार्थ के लिए लगाएं। प्रयत्न यह भी होना चाहिए कि सुयोग्य स्त्री पुरुषों में से एक कमाए, घर खर्च चलाए और दूसरे को लोकमंगल में प्रवृत्त होने की छूट दे दे। संयुक्त परिवारों में से एक व्यक्ति विश्व सेवा के लिए निकाला जाए और उसका खर्च परिवार वहन करे। जिनके पास संग्रहित पूंजी नहीं है, रोज कमाते, रोज खाते हैं, उन्हें भी परिवार का एक अतिरिक्त सदस्य, बेटा, लोकमंगल को मान लेना चाहिए और उसके लिए जितना श्रम, समय और धन अन्य परिवारियों पर खर्च होता है, उतना तो करना ही चाहिए। अखंड ज्योति, जून 1971, पृष्ठ -56, 57। 5. धर्मतंत्र को परिष्कृत करना होगा। उपाय आज खोजा जाए या हजार वर्ष बाद, प्रयत्न आज किया जाए या हजार वर्ष बाद, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। व्यक्ति और समाज के सम्मुख खड़ी हुई अनेकानेक समस्याओं, विपत्तियों और विभीषिकाओं का हल निकलेगा तभी जब मानवीय अंतःकरण में उत्कृष्ट आस्थाओं के बीजारोपण तथा परिपोषण का प्रयास युद्ध स्तरीय तत्परता के साथ आरंभ होगा। इसके लिए न राजनीति से काम चलेगा, न अर्थतंत्र के बलबूते कुछ ठीक काम हो सकेगा। उसे मात्र धर्मतंत्र ही कर सकता है। आज धर्म का कलेवर उपहासास्पद और विद्रूप हो गया है, यह ठीक है, किंतु यह भी ठीक है कि इसी को परिष्कृत, प्रखर एवं सुनियोजित बनाने पर भावनात्मक नव निर्माण का महान कार्य संपन्न हो सकेगा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय है नहीं। संपदा को अर्थतंत्र, शरीर को चिकित्सा तंत्र, मस्तिष्क को शिक्षा तंत्र, व्यवस्था को शासन तंत्र प्रभावित कर सकता है, परंतु अंतःकरण को प्रभावित करने की क्षमता धर्मतंत्र के अतिरिक्त और किसी में भी है नहीं। टूटे को सुधारा जाए या उसे नए सिरे से ढाला जाए, यह तकनीकी प्रश्न है। मूल तथ्य जहां का तहां रहता है कि विपत्तियों से छुटकारा पाने और उज्ज्वल भविष्य को मूर्तिमान करने में धर्मतंत्र की सहायता लिए बिना काम किसी भी प्रकार नहीं चल सकता। बहस शब्द की नहीं, विवेचना तथ्य की है। किसी को धर्म अध्यात्म से चिढ़ हो तो उनको संतुष्ट कराने वाले शब्द दूसरे शब्दकोश में ढूंढ निकाले जा सकते हैं। पर करना यह होगा कि व्यक्ति एवं समाज की अनेकानेक दिशाधाराओं को प्रभावित करने वाले अंतःकरण को उत्कृष्टता की संपदा से सुसंपन्न बनाया जाए, मानवीय संस्कृति के अवमूल्यन का अंत किया जाए, श्रद्धा और विवेक के समन्वय को, दृष्टिकोण को आधारभूत तथ्य बनाया जाए। प्रज्ञावतार का प्रयोजन यही है। उसका कार्यक्षेत्र जन जन की आस्थाओं को अध्यात्म के आधार पर और आदतों को धर्म धारणा के सहारे परिष्कृत करना है। उत्कृष्टता के प्रति श्रद्धा संवर्धन उसका प्रधान कार्यक्रम है। यह गतिचक्र जितनी तेजी से परिभ्रमण करेगा, नवयुग के दिव्य दर्शन की पुण्य वेला उतनी ही समीप आती चली जाएगी। अखंड ज्योति, ऑगस्ट 1979, पृष्ठ 31। 6. प्रत्यावर्तन ही युग परिवर्तन है। विगलित का अभिनव के रूप में प्रत्यावर्तन ही युग परिवर्तन है। व्यष्टि में दुष्टता और समष्टि में भ्रष्टता के तत्व बढ़ गए हैं। औचित्य का स्थान औद्धत्य हथियाता चला जा रहा है। समूहगत सहकारिता कुंठित हो गई है और संकीर्ण स्वार्थपरता का बोलबाला है। प्रवृत्तियां सृजन का बहाना भर करती हैं। व्यवहार में ध्वंस ही उनकी दिशाधारा है। ऐसी दशा में बड़े परिवर्तन से कम में काम नहीं चल सकता। प्रवाह को उलटना बड़ा काम है। विशेषतया निकृष्टता की सड़क पर जब आतुर घुड़दौड़ मच रही हो तो पवमानों की लगाम पकना और उन्हें रुकने ही नहीं, उलटने के लिए विवश करना एक बहुत बड़ा काम है, साथ ही अति कठिन भी, श्रम साध्य और साधन साध्य भी। क्रांतियों की बात करना सरल है, योजनाएं बनने में भी देर नहीं लगती, किंतु उन्हें कर दिखाना और सफल बनाना दुस्तर होता है। श्रेय हलचलों को नहीं, सफल प्रतिफल को मिलता है। इस दृष्टि से क्षेत्रीय और सामयिक क्रांतियां भी आंशिक रूप से ही सफल हो पाती हैं। फिर 400 करोड़ मनुष्यों की मन स्थिति और 25,000 मील परिधि के भूमंडल की परिस्थितियों को बदल देना कितना कठिन कार्य है, इसकी कल्पना करने भर से सामान्य बुद्धि उतनी ही हतप्रभ हो जाती है जितनी की विशिष्ट प्रज्ञा ब्रह्मांड के विस्तार और उसके अंतराल में चलती हुई हलचलों को देखकर। फिर भी काम तो काम ही है, जो होना है वह तो होगा ही, दूसरा विकल्प नहीं। यह जीवन और मरण का चौराहा है। जहां आज की दुनिया खड़ी हुई है, वहां से आगे बने के लिए दो ही मार्ग हैं, एक सर्वनाश, दूसरा नव सृजन। चुनाव इन्हीं दोनों में से एक का होना है। नियति को इन्हीं दोनों में से एक का चयन करना है। अखंड ज्योति, सितंबर 1979, पृष्ठ 52। 7. पेट और प्रजनन तक सीमित न रहें, प्रत्येक परिजन को पेट और प्रजनन की पशु प्रक्रिया से ऊंचे उठकर उन्हें दिव्य जीवन की भूमिका संपादित करने के लिए कुछ सक्रिय कदम बढ़ाने चाहिए। मात्र सोचते विचारते रहा जाए और कुछ किया न जाए तो काम न चलेगा। हम में से प्रत्येक को अधिक ऊंचा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कर्तृत्व में ऐसा हेर फेर करना चाहिए जिसके आधार में परमार्थ प्रयोजनों को अधिकाधिक स्थान मिल सके। उपलब्ध विभूतियों और संपदाओं को अपने शरीर और अपने परिवार के लिए सीमित नहीं कर लेना चाहिए, वरन उनका एक महत्वपूर्ण अंश लोक मंगल के लिए नियोजित करना चाहिए। अखंड ज्योति में 1972 पृष्ठ 43। 8. राजतंत्र और धर्मतंत्र परस्पर पूरक। यह ध्यान रखने की बात है कि संसार की दो ही प्रमुख शक्तियां हैं, एक राजतंत्र दूसरी धर्मतंत्र। राजसत्ता में भौतिक परिस्थितियों को प्रभावित करने की क्षमता है और धर्मसत्ता में अंतश्चेतना को। दोनों को कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे की पूरक होकर रहना होगा। यह धोखा है कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं। सच्ची बात यह है कि एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। कर्तव्यनिष्ठ और सदाचारी नागरिकों के बिना कोई राज्य समर्थ समुन्नत नहीं हो सकता, और राजसत्ता यदि धर्मसत्ता को की ठान ले तो फिर उसके लिए भी कुछ अधिक कर सकना कठिन है। रामराज्य तभी सफल रह सका जब उस पर वशिष्ठ का नियंत्रण था। चंद्रगुप्त की शासन गरिमा का श्रेय चाणक्य के मार्गदर्शन को ही दिया जा सकता है। प्राचीन काल की यह परंपरा आगे भी चलेगी। धर्मसत्ता का स्थान पहला है, इसलिए राजसत्ता को उसका समर्थक और सहायक ही बनकर रहना चाहिए। अखंड ज्योति में 1972 पृष्ठ 36। 9. विवेकपूर्ण तालमेल जरूरी। सभी मनुष्य हमारे जैसे विचार के नहीं हो सकते हैं और न हर परिस्थिति हमें प्रिय लगने वाली हो सकती है। ऐसी दशा में सहिष्णुता ही अपनानी पड़ती है। यदि तालमेल न बैठता हो तो उन परिस्थितियों से हट जाने या हटा देने का रास्ता अपनाया जा सकता है, पर निरंतर टकराव का कोई प्रयोजन नहीं। सुधार यदि अपनी मर्जी जैसा नहीं हो सकता तो इसे दुर्भाग्य मान बैठना और खींचने या असंतुलित होने लगना व्यर्थ है। अखंड ज्योति फरवरी 1974 पृष्ठ 34। 10. हमें व्यक्तियों अथवा परिस्थितियों की विपरीतता देखकर आवेशग्रस्त नहीं होना चाहिए। क्रोध में आना या हताश हो बैठना दोनों ही मनुष्य की आंतरिक कमजोरी की निशानी है। परिस्थितियों से धैर्य और औचित्य के आधार पर निपटा जाना चाहिए और सफलता को अनिवार्य न मानकर अपने प्रयास एवं कर्तव्य की सीमा में संतोष करना चाहिए। अखंड ज्योति फरवरी 1974 पृष्ठ 34। 11. भगवान की इच्छा युग परिवर्तन की व्यवस्था बना रही है। इसमें सहायक बनना ही वर्तमान युग में जीवित प्रबुद्ध आत्माओं के लिए सबसे बड़ी दूरदर्शिता है। अगले दिनों में पूंजी नामक वस्तु किसी व्यक्ति के पास नहीं रहने वाली है। धन एवं संपत्ति का स्वामित्व सरकार एवं समाज का होना सुनिश्चित है। हर व्यक्ति अपनी रोटी मेहनत करके कमाएगा और खाएगा। कोई चाहे तो इसे एक सुनिश्चित भविष्यवाणी की तरह नोट कर सकता है। अगले दिन इस तथ्य को अक्षरश सत्य सिद्ध करेंगे। इसलिए वर्तमान युग के विचारशील लोगों से हमारा आग्रह पूर्वक निवेदन है कि वे पूंजी बढ़ाने, बेटे पोतों के लिए जायदाद इक करने के गोरख धंधे में न उलझें। राजा और जमींदारों को मिटते हमने अपनी आंखों देख लिया, अब इन्हीं आंखों को व्यक्तिगत पूंजी को सार्वजनिक घोषित किया जाना देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अखंड ज्योति मार्च 1967 पृष्ठ 34-35। 12. सच्चे साथी सिद्ध हों। हमारे चले जाने के बाद युग परिवर्तन का दृश्य और स्थूल क्रियाकलाप जारी रखना हमारे हर प्रेमी स्वजन आत्मिया और सहचर का कर्तव्य है। जिसके भी मन में हमारे प्रति श्रद्धा सद्भावना हो वह उसे भीतर ही दबाकर न रखे, उसे रोने कल्पने तक सीमाबद्ध न करे, वरन उस संवेदना को मिशन को अधिक सहयोग देने में बदल दे। मरने के बाद पितरों का श्राद्ध तर्पण उसके वंशज अधिक भावनापूर्वक करते हैं। वियोग की व्यथा और श्रद्धा की प्रखरता का उभार जिस रचनात्मक मार्ग से प्रकट हो सके उसे श्राद्ध कहते हैं। आशा करनी चाहिए कि हमारे प्रति जहां भी श्रद्धा होगी श्राद्ध के रूप में परिणत और विकसित होकर रहेगी। मिशन अभी ज्ञान यज्ञ की प्रथम कक्षा में चल रहा है। इसे और अधिक व्यापक बनाया जा सके ज्ञानघट झोला पुस्तकालय हमारे लिए पिंडदान और तर्पण के श्रेष्ठतम आधार माने जा सकते हैं। हमारी आत्मा जहां कहीं भी स्वजनों को यह धर्मकृत्य करते देखेगी संतोष और आनंद अनुभव करेगी। इस क्रियाकलाप में संलग्न भावनाशील परिजनों को हमारा स्नेह आशीर्वाद संरक्षण सहयोग और सान्निध्य अपने चारों ओर बिखरा दिखाई देगा। सुविकसित पुष्पों पर वाले भौरों की तरह ऐसे दूरदर्शी और सेवाभावी परिजनों के इर्द गिर्द हम मंडराते ही रहेंगे और उन्हें अपना भावभरा गुंजन अति उत्साहपूर्वक निरंतर सुनाते रहेंगे। मिशन के अगले कदम रचनात्मक और संघर्षात्मक कार्यक्रमों से भरे हुए हैं। अवांछनीयता के विरुद्ध एक अति उग्र और अति व्यापक संघर्ष पड़ेगा। विचारों को विचारों से काटने की एक घमासान लड़ाई अगले दिनों होकर रहेगी। अनुचित और अन्याय का उन्मूलन किया जाना है, इसके लिए घर घर और गली गली में जो भावी महाभारत लड़ा जाएगा उसकी रूपरेखा विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। यह विश्व का अंतिम युद्ध होगा। इसके बाद युद्ध का वर्तमान विभत स्वरूप सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अनुचित के उन्मूलन के साथ साथ सृजन के लिए अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित की जाती हैं। नींव खोदना ही काफी नहीं, महल की दीवार भी तो चुननी पड़ेगी। ध्वंस के साथ सृजन और ऑपरेशन के साथ मरहम पट्टी और सिलाई सफाई का प्रबंध अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। सो समयानुसार वे कथाएं भी जल्दी ही सामने आने वाली हैं। ज्ञानयज्ञ की आग में पका पका कर इन दिनों उस सृजन के लिए ईंट चूने के भट्टे लगाए जा रहे हैं। इसमें जैसे ही प्रखरता आई कि दूसरे मोर्चे खड़े हुए। अज्ञान, अभाव और अशक्ति के तीनों मोर्चों पर अपनी सेना कमान संभालेगी। बौद्धिक क्रांति अकेली नहीं है, उसके साथ साथ नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति भी अविच्छिन्न रूप से संबद्ध हैं। राजनीतिक स्वाधीनता के लिए लड़ा गया संग्राम जितनी जनशक्ति और साधनों से लड़ा गया, अपना मोर्चा बहुत बड़ा, कम से कम तिगुना होने के कारण उसके लिए तिगुनी जनशक्ति, श्रमशक्ति, भवशक्ति और धनशक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। ज्ञानयज्ञ के विस्तार से ही यह उपलब्धियां हाथ लगेंगी, इसलिए इसी आरंभिक चरण पर इन दिनों अधिक जोर दिया जा रहा है। सीमित इतने तक नहीं रह सकते। हाथ पांवों में जरा सी गर्मी आते ही मंजिल की ओर अधिक तत्परतापूर्वक कदम उठने स्वयं ही शुरू हो जाएंगे और वे तब तक बढ़ते ही रहेंगे जब तक मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। हम इस सारे चक्रव्यूह का संचालन पर्दे के पीछे बैठकर करेंगे। हमारा प्रयाण नवनिर्माण के पथ पर चलने वाले किसी सैनिक को अखरेगा नहीं, क्योंकि अदृश्य रहते हुए भी हम दृश्य व्यक्तियों से अधिक समर्थ बनकर अधिक साहस और अधिक क्षमता के साथ अधिक योगदान, अधिक मार्गदर्शन कर सकने में समर्थ होंगे। छोड़े हुए काम को अधूरा छोड़कर हम कंधा डालने वाले नहीं हैं। हमारी सत्ता दृश्य रहे या अदृश्य, लोक में रहे या परलोक में, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। प्रश्न केवल मिशन की प्रगति में योगदान करने का है, सो हम किसी भी स्थिति में रहते हुए निरंतर करते रहेंगे। साथी सहचरों को अकेला छोड़कर चल देना हमारे लिए उचित नहीं होगा। अखंड ज्योति, मार्च 1971, पृष्ठ 52, 13। जो घटित होने वाला है उस सफलता के लिए श्रेयाधिकारी भागीदार बनने से दूरदर्शी विज्ञजनों में से किसी को भी चूकना नहीं चाहिए। यह लोग मोह के लिए खपने और अहंकार प्रदर्शन के लिए ठाट बाट बनाने की बात सोचने और उसी स्तर की धारणा रीति नीति अपनाए रहने का समय नहीं है। औसत नागरिक स्तर का निर्वाह और परिवार को बढ़ाने की अपेक्षा स्वावलंबी बनाने का निर्धारण किया जाए तो वह बुद्धिमता भरा लाभदायक निर्धारण होगा। जिनसे इतना बन पड़ेगा वे देखेंगे कि उनके पास युग सृजन के निमित्त कितना अधिक तन मन धन का वैभव समर्पित करने योग्य बच जाता है। जबकि लिप्साओं में ग्रस्त रहने पर व्यस्तता और अभावग्रस्तता की ही शिकायत बनी रहती है। श्रेय संभावना की भागीदारी में सम्मिलित होने का सुयोग्य सौभाग्य जिन्हें अर्जित करना है, हमारी ही तरह भौतिक जगत में संयमी सेवाधर्मी बनना पड़ेगा। सादा जीवन उच्च विचार का मंत्र अपने रोम रोम में जमाना पड़ेगा। इतना कर सकने वाले ही अगले दिनों की दिव्य भूमिकाएं हमारे छोड़े उत्तराधिकार को वहन कर सकेंगे। अखंड ज्योति, फरवरी 1987, पृष्ठ 64, 1। अखंड ज्योति परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिनिधि अथवा उत्तराधिकारी बनाने का खुला आमंत्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न साहस का है, जिनमें हिम्मत हो वे इस निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं। कोई भौतिक पदार्थ बांटे जा रहे होते तो अगणित याचक आ खड़े होते, पर यहाँ तो लेने का नहीं देने का प्रश्न है, भोग का नहीं त्याग का प्रश्न है। इसलिए स्वभावत कोई बिरले ही आगे का साहस करेंगे। फिर भी यह निश्चित है कि यह धरती कभी भी वीर विहीन नहीं होती। इसमें ऊंचे आदर्शों को अपनाने वाले, ऊंचे स्तर के बड़े दिल वाले व्यक्ति भी रहते ही हैं और उनका अपने परिवार में अभाव नहीं है। थोड़े ही सही पर हैं जरूर, जो हैं उतनों से भी अपना काम चल सकता है। हमारे हाथों में जो मशाल सौंपी गई थी उसे हम 1000-2000 हाथों में भी जलती देख सके तो संतोष की बात ही कही जाएगी। अखंड ज्योति, फरवरी 1965, पृष्ठ 51। मनुष्य जिसे प्यार करता है उसके उत्कर्ष एवं सुख के लिए बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। अपने शरीर मन अंतःकरण एवं भौतिक साधनों का अधिकाधिक भाग समाज और संस्कृति की सेवा में लगाने से रुका नहीं जाता। जितना भी कुछ पास दिखता है उसे अपने प्रिय आदर्शों के लिए लुटा डालने की हूक उठती है कि कोई भी सांसारिक प्रलोभन उसे रोक सकने में समर्थ नहीं होता। पम 0 श्रीराम शर्मा आचार्य।